कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे जय राधा मदन गोपाल राधा मदन गोपाल राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे श्री श्री राधा मदन गोपाल भगवान की श्री श्री ललिता विशाखा राधा मदन गोपाल भगवान की श्री श्री गौर निताई की श्रील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती रुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः श्रीमद् भागवत आज के प्रातः श्रीमद् भागवतम सत्र में हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के चौथे अध्याय से पढ़ रहे हैं। अध्याय का शीर्षक है सती द्वारा शरीर त्याग। श्लोक क्रमांक 12। दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विज गुणांश्च फल्गुन् बहुली कृष्णवः महत्तमः तेषु अविदत् भवान् अघम्। दोषान् परेषां हि गुणोषु साधवो दोषान् परेषां हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विज गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विज गुणांश्च फल्गुन् बहुली कृष्णवो गुणांश्च फल्गुन् बहुली कृष्णवो महत्तमास्तेषु अविदत् भवानघम्। महत्तमास्तेषु अविदत् अवाघनम् महत्तमास्तेषु अविदत् भवानघम्। हरे कृष्ण। दोषान् परेषान् हि गुणेषु साधवो गृह्णन्ति केचिन्न भवादृशो द्विज गुणांश्च फल्गुन् बहुली कृष्णवो महत्तमास्तेषु अविदत् अभवनम्। माताजीज, दोषान् दोष परेशाम अन्यों के ही क्योंकि गुणेषु गुणों में साधवः साधुजन गृह्णन्ति पाते हैं केचित् कुछ न नहीं, भवादृशः आपके समान, द्विज हे द्विज, गुणान गुण, च तथा फल्गुन छोटा, बहुली करिष्णवः अत्यधिक बढ़ा चढ़ा देता है, महत्तमः महापुरुष, तेषु उनमें से, अविदत ढूंढते हैं, भवान आप, अघम दोष, सती सती अपने पिता से कह रही है, हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, लेकिन शिव जी अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। विपरीत इसके यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो वे उसे और भी अधिक बढ़ा देते हैं। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोप किया है। तात्पर्य में ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यहाँ पर दक्ष को उसकी पुत्री सती ने द्विज कहकर संबोधित किया है। द्विज मनुष्यों की सर्वश्रेष्ठ जातियों यानी कि ब्राह्मण क्षत्रिय तथा वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति न होकर ऐसा व्यक्ति होता है जिसे गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन प्राप्त हुआ है और जिसे अच्छे तथा बुरे चीज़ों का विवेक बुद्धि है। अतः ये आशा की जाती है कि वो तर्कशास्त्र तथा दर्शन को समझता है। दक्ष कन्या सती के दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से ही संबंध रहता है, उसके कांटों तथा रंगों से नहीं, उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो बहुत विरला होते हैं अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते। किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का दोनों का निर्णय करता है। असाधारण महापुरुषों में भी श्रेणियां होती है और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वो है जो किसी की नगण्य विशेषता को भी मानकर उसके गुण को प्रवर्धित कर देता है यानी कि बढ़ाता है। शिवजी आशुतोष भी कहलाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। उदाहरणार्थ एक बार एक भक्त ने शिवजी से ये वर मांगा कि वह जिस किसी को शीश को स्पर्श करेगा वह व्यक्ति शीश धड़ से अलग हो जाएगा। शिवजी ने तुरंत हामी भर दी, अथास्तु कह दिया। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा गया वर प्रशंसनीय नहीं था क्योंकि वो अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु शिवजी ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वरदान दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया। किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा, आप बिल्कुल ही इसके विपरीत हैं। यद्यपि शिव में अनेक गुण हैं और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निकृष्ट मानकर केवल उनके दोषों को ही ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को मानने के कारण, उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित हो गए हैं। मनुष्य तभी महान बनता है जब वो दूसरों के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने वृथा ही अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया है। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यं तदाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। तो श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में यह प्रसंग आता है जिसमें इसका पूर्व इतिहास इस प्रकार से है कि सती का जन्म प्रजापति दक्ष से हुआ था और प्रजापति दक्ष जो हैं वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। सृष्टि के सृजन के लिए, चर सृष्टि के सृजन के लिए वो अनेकों प्रजापतियों को जन्म देते हैं, उसमें से एक है दक्ष प्रजापति। और दक्ष को सती कन्या के रूप में प्राप्त होती है। यथावकाश जब वो उपवर बन जाती है तो ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार दक्ष महाराज अपने पुत्री को अपनी इच्छा के विरुद्ध शंकर जी से विवाह कर लेते हैं। उनके मन में ये विचार था कि शंकर जी तो ऐसे ही विरक्त हैं, भस्म लगा कर बैठते हैं, कोई घर नहीं है, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई संपत्ति नहीं है, कोई ऐश्वर्य नहीं है, सब फकीर आदमी है, तो ये मेरी कन्या के लिए योग्य नहीं है। मैं तो राजा हूँ, प्रजापति हूँ, मेरे पास इतना ऐश्वर्य है, मेरी कन्या इतनी सुंदर है, राजकुमारी है, तो उसके लिए कोई अनुरूप राजकुमार होना चाहिए। लेकिन ब्रह्मा जी कहते नहीं, पिता है वो, परम पिता, पितामह ब्रह्मा, तो वो उनका आदेश टाल नहीं सकते हैं। और मन के खिलाफ, मन में शिव जी के प्रति घृणा भाव, निंदनीय भाव रखते हुए, मतलब तो ये बहुत घटिया इंसान है, ऐसा भाव रखते हुए अपनी बेटी का विवाह उसके साथ कर लेते हैं। मतलब विवाह तो नहीं करते हैं, तो चली जाती है, विवाह होता है लेकिन वो उसमें सक्रिय सहभाग नहीं लेते। और तब से लेकर जब से सती अपने पति के घर गई है तब से उनका उनके जमाई की तरफ बहुत बुरा रोख है, बहुत बुरी भावना है कि ये तो ऐसा जमाई है मेरा, कुछ काम का नहीं है, बिल्कुल बहुत बेकार इंसान है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जब माता पिता के मन की इच्छा के विरुद्ध जब कन्या का विवाह होता है तो सहज ही कन्या जमाई और माता पिता ये दूर हो जाते हैं, कोई संबंध बचता नहीं है, कोई ज़्यादा आदान प्रदान होता नहीं है, मन दूर हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद में दक्ष के यहाँ पर एक बहुत यज्ञ का आयोजन होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल, तो दक्ष राजा की जितनी कन्याएं थी वो सब वहाँ जाती हैं, सबको निमंत्रण है, सबके जमाइयों को निमंत्रण है, मतलब सबके पतियों को निमंत्रण है, सब लोग अपने पिता के घर में, इतना बड़ा उत्सव है, सज धज के अलंकार पहन के अपने पिता के घर में जा रही हैं। उसके गाँव गाँव में घर घर में चर्चा हो रही है, हमारे पिता के यहाँ पर आज यज्ञ है। लेकिन सती और भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं है, तो सती बड़ी दुखी हो जाती है। लेकिन शिवजी तो विरक्त है, उनको किसी से कोई आसक्ति, कोई लोभ, कोई है ही नहीं, उनको तो अपने ध्यान में बैठे हुए आनंद से। लेकिन सती बहुत परेशान है, वो चाहती है कि मेरे सारी बहनें, मेरे सारे मायके के परिवार के लोग एकत्र हो रहे हैं और मैं अकेली यहाँ पर हूँ, मुझे निमंत्रण नहीं है। लेकिन क्यों निमंत्रण की ज़रूरत है, वो तो मेरे पिता का घर है, तो जाना चाहिए मुझे। लेकिन मर्यादा के अनुसार अपने पति को मिलने जाती है और पति से आज्ञा भी चाहती है। तो पति जो शंकर भगवान जो है वो परम वैष्णव है, विरक्त तो है ही लेकिन परम वैष्णव है, भगवान के परम भक्त हैं, लेकिन महाबुद्धिमान भी हैं, सब प्रकार के व्यवहार को भी समझते हैं। तो वो अपने प्रिय पत्नी सती को कहते हैं, देखो ऐसा है कि एक तो हमारा विवाह उनके मर्जी के विरुद्ध हुआ है, दूसरा उनके घर में इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, सभी देवताओं भी आएंगे, सभी रिश्तेदार भी आएंगे, लेकिन आपको निमंत्रण नहीं है। वैसे तो आप उनकी ज्येष्ठ कन्या हैं और आपको निमंत्रण तो आना ही चाहिए, और अगर निमंत्रण नहीं भी आता है तो जाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि तुम्हारे पिता का हमारे प्रति मन मैला है, तो निमंत्रण न देने में कुछ विशेष कारण है, वो नहीं चाहते कि तुम वहां पर आ जाओ, वो नहीं चाहते कि हम वहां पर आ जाएं, ये इसका गर्भित अर्थ है। इसलिए हमारी आपको ये सुझाव है कि आप वहां मत जाना, क्योंकि वहां पर आपका अपमान हो सकता है, वहां पर आपका स्वागत नहीं हो सकता है, कोई स्वागत ही नहीं करेंगे आपको, कोई नोट ही नहीं करेंगे कि भाई आइए सती, तो फिर आपको बुरा लगेगा, आपका मन दुखी हो जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में वहाँ जाना अच्छा नहीं है। और तुम क्षत्रिय की कन्या हो, तुम्हें अपमान भी सहनने होगा। वो ये नहीं कहते कि मेरा भी अपमान करेंगे फिर आपको दुख होगा, वो तो इतने नम्र हैं कि वो अपनी तरफ कोई मान सम्मान की विचार ही नहीं करते। फिर भी सती जो है वो स्त्री है, कन्या है किसी पिता की, उसका भी मायका है, उसका भी थोड़ी आसक्ति है, वो आगे पीछे की बातें बोल लेती है कि मुझे तो निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, मैं तो उसी घर की कन्या हूँ, वो तो मेरे पिता का घर का उत्सव है, मुझे जाना ही चाहिए, मुझे मेरा मन नहीं रह रहा है, मैं तो जा रही हूँ। फिर भी वो उनको वार्निंग देते हैं कि मत जाना, अघटित हो सकता है, वो चली जाती है। तो शिव जी जानते हैं कि कुछ ना कुछ होगा, तो वो अपने एक गणों में से एक महान व्यक्ति, शायद उसका नाम वीरभद्र था, हाँ दो भयंकर राक्षस जैसे गणों को भेज देते हैं। मतलब शिवजी जो है ना, उनके साथ में बहुत ऐसे लोग रहते हैं जो निचली योनि के रहते हैं, जैसे भूत प्रेत पिशाच डाकिनी वेताल गण, ऐसे बहुत सारे जो निम्न शरीर प्राप्त करते हैं, कभी सूक्ष्म शरीर प्राप्त करते हैं, कभी भूत प्रेत का शरीर प्राप्त करते हैं, उनको वो आश्रय देते हैं। लेकिन वो शिव जी के आश्रय से कृपा प्राप्त करते हैं और बड़ी शक्ति भी प्राप्त करते हैं, बहुत भयंकर। तो ऐसे बहुत वीर और भयंकर ऐसे दो व्यक्तियों को भेज देते हैं साथ में कि भाई कुछ हुआ तो संभाल लेना इनको, और पीछे पीछे स्वयं भी आते हैं। अब वहां पहुंचते हैं तो वो जैसे ही पति ने कहा था वैसे हो रहा है, कोई उसको स्वागत नहीं कर रहा है, कोई उसको गले नहीं मिल रहा है, कोई उसको बहुत देर से आई, बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ, बहुत प्रेम से नहीं पुकार रहे, कोई नहीं, नोट भी नहीं कर रहे उसको, ठीक है। लेकिन जब यज्ञ शुरू होता है तो यज्ञ में सभी देवताओं को आहुति अर्पण करते हैं, और उसमें शिवजी भी महादेव हैं। आप सब जानते ही होंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा भ्रकुटी मध्य से शिवजी का निर्माण जन्म हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र होने के बावजूद भी महादेव किसको कहते हैं? शिवजी को कहते हैं। और स्वयं शिवजी ब्रह्मा जी के पुत्र होने पर भी ब्रह्मा जी उनकी पूजा करते हैं। ये तो किसके द्वारा किसका जन्म हो रहा है, ये तो तकनीकी बात है, सर टेक्निकल वे टू अंडरस्टैंड कि पृथ्वी पर या धरातल पर कैसे प्रवेश करना है, तो किसी के गर्भ से आना है। भगवान भी वैसे तो देवकी के गर्भ से आते हैं ना, लेकिन देवकी तो उनके भक्त हैं माता होने पर भी। तो शिवजी भी महादेव हैं और उनका भी उसमें यज्ञ में अधिकार है आहुति स्वीकारने का और प्राप्त करने का। और जब तक शिवजी जैसे महान देव आहुति स्वीकार नहीं करते तब तक यज्ञ पूरा भी नहीं होता है। लेकिन जानबूझकर शिवजी आए हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, किसी अपेक्षा से नहीं कि मेरी पत्नी सुरक्षित होनी चाहिए, बस इसी से दूर आकर उनके लिए बैठे हुए हैं। कोई निमंत्रण है नहीं, निमंत्रण क्यों नहीं है, इस भावना में नहीं बैठे। और सभी देवताओं को उस यज्ञ में आहुति अर्पण की जाती है, लेकिन शंकर भगवान को आहुति नहीं दी जाती है। तो ये सती के लिए एक अपमान है कि मेरे पति, शिव का मतलब क्या होता है? परम शुद्ध, परम पवित्र, शिव का अर्थ ही है संस्कृत में। मेरे पति साक्षात सद्गुणों के आगार हैं, पवित्रता मूर्तिमान पवित्रता है, सभी देवों में महादेव हैं, सब देवों की पूजनीय हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, हर प्रकार के आहुति स्वीकार करने के योग्य हैं, फिर भी मेरे पिता इतने उद्दंड भाव से यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं कि मेरे पति को, मेरे पति हैं इसलिए नहीं, उनका अपना भी स्थान है और उनका आहुति अर्पण नहीं कर रहे हैं, उनके अपमान है। तो उसे यकीन होता है कि जो मेरे पति ने कहा था वही सही था। लेकिन अब तो वो बीच स्थिति में आ गई ना, वो तो शी इज इन द मिडल ऑफ सिचुएशन, उधर ही उत्सव के बीच में खड़ी है, तो कैसे वो शांति से जा सकती है? जहाँ पर पति का अपराध हो रहा है वहाँ पर वो चुप नहीं रह सकती है। तो फिर वो बोलने लगती है, बहुत कठोर वचन बोलती है। यहाँ पर कह रही है हे द्विज, यानी कि द्विज का मतलब क्या होता है? जो जन्म लेता है उसका गुरु के द्वारा दोबारा जन्म होता है, मतलब दीक्षा को दूसरा जन्म कहा गया है। एक जन्म माता के कोख से होता है और एक जन्म जो है वो जन्म होने के बाद थोड़े बड़े होने के बाद थोड़ा विद्या और ज्ञान प्राप्त करने के बाद में श्री गुरु जो स्वीकार करते हैं शिष्य के रूप में, तो वो उसको दूसरा जन्म कहते हैं द्विज। और द्विज के बाद में फिर वो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, फिर वो ब्राह्मण बनता है, उसके बाद आगे प्रगति करता है तो विप्र बन जाता है, और उसके आगे कौन बनता है, ब्राह्मण विप्र और वो नहीं एक और है उसके बीच में, तो उसका आगे वैष्णव तो परम पद है ही। तो ऐसे ये वो जन्म ना जाए थे शूद्र, हाँ संस्कार भवे द्विज और बाद में विप्र और चौथा क्या है, एनीवेज तो ये ब्राह्मण के उन्नति की स्थितियां हैं। तो इसमें ब्राह्मण वैश्य और क्षत्रिय इनको ही द्विज कहा गया है, क्योंकि इनकी ही दीक्षा हो सकती है, शूद्रों की दीक्षा नहीं होती है। तो वो जानबूझ के पति अपने पिता को द्विज के रूप में मतलब उपरोधिक भाव से पुकार रही है, ये देखो आप तो द्विज हो, आपके अंदर ये गुण होने चाहिए, लेकिन आप तो उल्टे हो। द्विज कैसा होना चाहिए, वो दूसरों के दोषों को देखता नहीं है, उससे अपेक्षा है ये, क्योंकि वो ज्ञान प्राप्त कर चुका है, उससे अपेक्षा है कि वो दूसरों के दोष नहीं देखेगा, सद्गुण देखेगा। और आप जन्म के केवल द्विज हो या दीक्षा के केवल द्विज हो, लेकिन आपके अंदर द्विज का कोई गुण नहीं है, आप पतित हो, अपने पिता से कह रही है, क्योंकि पति के साथ विवाह होने के बाद में कन्या का सर्वस्व पति होता है, उस घर से उसका एक प्रकार से रिश्ता टूट जाता है, उसका कल्याण, उसका जीवन के अंतिम समय मोक्ष जो भी कुछ है वो सब पति के हाथ में है, पति के स्थिति में है। तो वो कह रही है कि आप द्विज व्यक्ति होने पर भी ऐसा व्यवहार कर रहे हो जो शूद्र से भी घटिया है। फिर वो ऐसे कहती है कि जो महान व्यक्ति होते हैं जिनको महत्तम कहते हैं, वो व्यक्ति दूसरों के केवल गुण को नहीं देखते हैं, दूसरों के छोटे से गुण को वर्धित कर देते हैं, वृद्धिंगत करते हैं, बड़ा कर देते हैं छोटा सा। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझेंगे, एक माता होती है जब उसका छोटा सा बालक होता है तो वो जरा सा कुछ एक आध भजन बोल लेता है तो माता कितना उसको दुनिया को बताती है, अरे मेरा बेटा ऐसा भजन गाता है, देखो देखो कैसा गाता है, देखो मैंने रिकॉर्डिंग करके रखा है, देखो ऐसा है। अभी बालक वो क्या गा सकता है, लेकिन बालक जब प्रयास भी करता है गाने का तो माता उसको इतना बड़ा चढ़ाकर लोगों को बताती है। ये वास्तविक श्रेष्ठ महत्तम ब्राह्मण का गुण है कि वो किसी व्यक्ति के अंदर छोटा सा भी गुण देखेंगे तो उसका वृद्धि करके लोगों के सामने प्रकाशित करते हैं। और हम लोग कैसे होते हैं, हमको तो किसी के गुण दिखाई नहीं पड़ते, गुण इतने बड़े होने पर भी हमारे सामने बार बार प्रदर्शित होने पर भी हमको उनके गुण जो है वो दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन इतना सा दोष रहेगा तो बार बार दिखाई पड़ता है, बार बार दिखाई पड़ता है। और वो दोष दिखने पर किसी को बताने के समय हम उसको बार 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 दोहराते हैं, ये हमारी स्थिति है। तो ये पतित स्थिति है और हम सबको ये समझना है कि वैष्णव बनने का मतलब क्या है। क्या थोड़ी इस कथा के बारे में बताते हैं आपको, तो ये यहाँ पर अपने पिता को बहुत कठोर वचन से बोल रही है, उसके बावजूद भी उसके पिता अपने निर्णय से हटते नहीं है कि भाई ठीक है जो कुछ कहना है कह दो, तुम्हारे पति का मैं सम्मान नहीं करने वाला। फिर सती इतनी उद्विग्न हो जाती है कि वो अग्नि मंत्र कहकर अपने आप को उसी यज्ञ कुंड में भस्म कर देती, वो कहती है कि ये शरीर आपसे प्राप्त हुआ है और आप इतने पतित हो इसलिए आपके द्वारा प्राप्त हुए शरीर में मैं एक क्षण भी और नहीं रहना चाहती, मैं आपके वंश से क्या कहते हैं उसको डिस्कनेक्ट होना चाहती हूँ, अपने आप को अलग करना चाहती हूँ, और मैं इस शरीर में जीवित रही तो हमेशा आपकी कन्या के रूप में जानी जाएंगी, इसलिए मैं अभी शरीर को नष्ट कर देती हूँ। और सबके सामने अचानक उसके पति वहाँ बैठे हुए हैं, सब देवता, सब महान राजा, वैष्णव, ऋषिगण सब बैठे हुए हैं, अचानक उस इतने बड़े यज्ञ में सती अपने आप को दहन कर देती है। फिर जो गण आए हुए हैं वो सब हमला कर देते हैं उसके, बहुत भयंकर युद्ध होता है, आप समझ सकते हैं, इतना पवित्र वातावरण है, इतना उत्सव का वातावरण है, अचानक उसका युद्ध भूमि में रूपांतर होता है, खून खराबा, मांस, चीख पुकार, सब अशुभ चीजें जो है खून की तरह वहां पर गिनने लगती है, और वो गण जो है इतने उनका मन इतना उद्विग्न होता है देखकर हमारी रानी को ऐसा व्यवहार किया गया और वो आत्महत्या कर चुकी, तो वो दक्ष का सर भी काट देते, वो दक्ष सरहीन हो जाता है, उसके बाद दक्ष नम्र हो जाता है। अरे वो तो आपको एक कथा पढ़नी चाहिए कि एक वैष्णव होने के नाते, एक वैष्णव अगर आप बनना चाहते हो तो आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये समझने के लिए आपको अध्याय पढ़ना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि सब वहां बैठे हुए हैं, और जैसे ही ये घटना होती है तो अचानक सब लोग उद्विग्न हो जाते हैं, हाँ सब लोग का विकार ऐसे ऊपर आ जाते हैं, तो फिर एक उठ के कोई बोलता है, दूसरा उसको उसके काट देता है उसकी बात को, फिर वो काटता है उसकी बात को, फिर वो शाप देता है उसको, फिर दूसरा उसका शाप सुनने पर वो भी शाप देता है उसको, ऐसी लंबी कथा है। इसके बाद में सब सब ऋषि मुनि सब जो है आवेग में आकर अपराध कर देते हैं एक दूसरे का, तो केवल शापों की मालिका है इसके अंदर, एक ने क्या शाप दिया, फिर उसके जवाब में क्या शाप दिया गया, उसके बाद तीसरा क्या शाप हुआ, फिर चौथा पांचवा, और बड़े बड़े लोग हैं इसके अंदर, ऐसा नहीं कि वो बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे ऐसे मजाक मजाक मस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बड़ी गंभीर बातें हो रही है। ऐसे कहते हैं कि हम क्या हैं ये अगर जानना है तो हमारे ऊपर कोई ऐसा अनुचित प्रसंग होना चाहिए, एज लॉन्ग एज एवरीथिंग इज फाइन एवरीबडी इज फाइन, लेकिन जब कोई संकट वाली स्थिति हो जाती है तो आपकी जो सही चेतना है वो बाहर आ जाती है। समझो आप अभी बोट में जा रहे हो, सब लोग आनंद ले रहे हैं, पिकनिक का गीत गा रहे हैं, सब लोग होली कर रहे हैं, उस समुद्र को वैसे इतना आनंद ले रहे हैं, चलो मैं करता हूँ, जब तुम करो बाद में मैं करता हूँ, फिर कोई गीत गा रहा है, कोई नाच रहा है, कोई ऐसे गाना गा रहा है, सब लोग गले मिल रहे हैं, किसी को मिठाई खिला रहे हैं, तो इतना प्रेम है, इतना बड़ा ग्रुप में पिकनिक बनाने जा रहे हैं समुद्र के अंदर, अचानक पता चलता है कि बोट में छेद है और पानी आने वाला है और आ रहा है, आ रहा है, आ गया, आ गया, आ गया, बोट भर गई, फिर सारे गीत बंद, सब कुछ स्तुतियां, सब प्रेम, गले मिलना सब बंद, वो नदी को बोट को चलाना है वो सब बंद, सबसे पहले किसी की छाती पर पांव रखकर मैं कैसे अपने आप को बचाऊं ये देखेंगे बस खाली, उस समय कुछ प्रेम मेम सब खत्म, हाँ कोई संकट आएगा तो तुरंत मत पता चलेगा आपको हम कौन है और हमारी स्थिति क्या है। जो सही में संत है वो उस आपद स्थिति में भी अपना संत का व्यवहार नहीं छोड़ेगा और अपनी करुणा का व्यवहार बनाए रखेगा और सबसे पहले सब अन्य लोगों को बचाने का प्रयास करेगा और सबसे लास्ट में अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, वो संत है। आम आदमी कौन है, तुरंत किसी की भी छाती में पाँव रखकर वो पहले सोचेगा मुझे जाना है, हाँ 15 लोग हैं, दो टायर हैं तो ऐसे मारामारी करेंगे ये दो आदमी पहले जाने के लिए, हाँ इसलिए ऐसे कहते हैं कि यू आर व्हेन यू आर पुट अंडर स्ट्रेस, आप सही में कौन हो, वो व्यक्ति हो आप जब आपके ऊपर कोई स्ट्रेस कोई संकट आता है तब आप कैसा व्यवहार करते हो, वो आप वास्तव में हो, दैट इज योर रियलिटी। सब संत बैठे हैं, अच्छा यज्ञ हो रहा है, बढ़िया से सब एकदम पवित्र वातावरण है, जैसे ही एक भयंकर घटना हो जाती है, हाँ उद्विग्न करने वाली, सबकी जो ओरिजिनल चेतना जो है वो बाहर आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि संत लोग भी स्थिति के प्रभाव में के वश में आ जाते हैं कभी कभी, हाँ तो हम लोग कौन है, इतने बड़े बड़े लोगों का यहाँ पर वर्णन दिया है, दक्ष ने क्या किया उसने क्या, लेकिन शिव जी कैसे हैं, शांति से बैठे, अपने मन का संतुलन कहीं भी उनका डिस्टर्ब नहीं हुआ है, इतनी भयंकर घटना हो गई, अपनी प्रिय पत्नी को वो खो देते हैं फिर भी वो विचलित नहीं होते, ये संत है, तो संत नहीं ये तो परम महादेव है भगवान। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये भक्तों के और जो बुरे लोग होते हैं उनकी गणना करते हैं, क्लासिफिकेशन, तो क्या बोलते हैं कि संत लोग जो होते हैं, साधु जिसको कहते हैं, जो भगवान को भजन करते हैं, भगवान को मानते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, प्रचार करते हैं, साधना करते हैं, उनको साधु कहते हैं। और एक है महत, जो दूसरों के अच्छे गुणों को भी देखते हैं और बुरे गुणों का भी अनुभव करते हैं। दुर्लक्षण होता है, उनको दिखाई पड़ता है एज इट इज। उसके ऊपर के लोग जो है वो गुणों को देखते हैं लेकिन उसके बारे में बात नहीं करते हैं, केवल अच्छे गुणों के बारे में बात करते हैं, दुर्गुणों के बारे में देखते हैं, महसूस करते हैं लेकिन उसको बाजू में रखते हैं। फिर महत्तम, महत्तम यानी वो छोटे से भी गुण होंगे ना तो उसको पहले देखते हैं, और कितना ही बड़ा दोष होगा तो उनको दिखाई नहीं पड़ता है वो। और अति महत्तम वो लोग होते हैं कि उनको दोष दिखाई नहीं पड़ते हैं, दे डोंट सी एनी दोष, और दोष भी दिखाई देता है उनको तो वो सद्गुण के रूप में देखते हैं उसको। और साथ साथ में अगर छोटा सा भी गुण हो उसको इतना बड़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो क्या क्या बताया मैंने, महत, महत्तर, महत्तम और अति महत्तम, ये साधुओं का स्थिति है। तो हमको एक दिन जीवन में अति महत्तम बनना है। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज जी के साथ पास हम गए थे और उन्होंने कहा कि महाराज जी आप तो सब जानते हैं, हमने सुना है कि गुरु जी एक्सरे की तरह होते हैं, वो जब किसी व्यक्ति को देखते हैं तो सब कुछ उसका अंदर का भी सब दोष देख लेते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, तो महाराज जी आप हमको भी देख रहे हैं तो माफ़ करना, हमारे अंदर बहुत दोष हैं, कृपा करके आप हमें कृपा देना अपनी। तो उन्होंने कहा कोई मैं तो दोष देखता ही नहीं हूँ, मुझे को दोष दिखाई नहीं पड़ रहा है। वो क्योंकि मधुमक्खी की तरह होते हैं। मधुमक्खी कैसी होती है, मधुमक्खी को फूल का रंग पीला है कि गुलाबी है कि नीला है सब दिखाई पड़ता है, लेकिन वो देखती ही नहीं उसकी तरफ, उसको केवल किससे मतलब है, मधु से। मधु जहाँ पर है वहाँ पर ही वो जाएगी, कांटे भी है, बदबू भी है, गंदगी भी है, उसके बीच में सीधे मधु के पास जाएगी, मधु लेगी और चली जाएगी। फिर बोलेगी नहीं ये नीले फूल वाला जो मधु है ना वो अच्छा नहीं होता है, वो पीले वाला जो अच्छा होता है, ऐसा नहीं बताती वो। मधु मधु होता है बस, कहीं भी मिले तो उसके पास चली जाती है। संत जो है वो मधुमक्खी की तरह होता है, वो केवल मधु यानी कि भक्ति, हृदय में जो भाव है भगवान के प्रेम का, उसी को ग्रहण करते हैं। और क्या देखते हैं हमारे जैसे लोगों के अंदर, अरे भाई इसके अंदर थोड़ी सी ऐसी चेतना है भगवान की भक्ति करने की, थोड़ी सी इसको इच्छा है, थोड़ा सा स्पार्क है इसके अंदर कि मैं भगवान की भजन करना चाहता हूँ, उसी को पकड़ते हैं, उसी पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उसी को हवा देते हैं और उसी को ज्योति बनाकर उसकी ज्वाला बना देते हैं। और ये जानते भी हैं अगर दोष भी इसके अंदर है तो वो जब ज्योति का रूपांतर ज्वाला में होगा तो वो ज्वाला सारे दोषों को जलाकर भस्म करके केवल गुण ही गुण बचेंगे और वृद्धिंगत गुण, बड़े जो बड़े चढ़े हुए हैं, जो बड़े वृद्धि हो गई है वही बचेंगे। इस बात पर उनका पूरा विश्वास है, इसलिए वो उनकी दृष्टि जो है ना, जैसे हम देखते हैं ना कि LIC का जो होता है ना एजेंट, वो शादी में जाएगा, नामकरण में जाएगा, गृह प्रवेश में जाएगा और किसी उत्सव में जाएगा, क्या देखेगा किसको पॉलिसी बेचूं, यही देखता है वो। उसकी दृष्टि फिक्स रहती है, किधर भी जाएगा तो बस कैसे मैं क्लाइंट को पकड़ूं, ऐसा है। जो जिसकी चेतना है वो उसी को ढूंढते रहता है। तो संत लोग भी ऐसे ही है, बनिया जैसे ही होते हैं वो देखते हैं किसी के अंदर क्या गुण है, उसी को हवा देते रहते हैं बस, वही उनका बिजनेस है और इसके लिए कल्टिवेट करते हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने आप जन्म से होता है उनके अंदर, उनकी साधना के बल से उनके अंदर ऐसा सद्गुण उत्पन्न होता है। और हमें भी देखना है कि ये नामुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं कि ये केवल संतों की मक्तेदारी है, वो संत ही कर सकते हैं, सही बात है, लेकिन आप और हम भी संत बन सकते हैं, उसकी प्रक्रिया है, उसकी प्रोसीजर है। हम कहते प्रभु जी हम तो क्या बनेंगे, आप तो संत हो, ये भी मिथ्या अहंकार है, ऐसा सोचना भी भगवान का हम लोग अपमान कर रहे हैं, क्योंकि भगवान ने आपको ऐसी प्रक्रिया दी है कि किसी भी जीव को ये प्रक्रिया को अपना कर वो संत बन सकता है, अति महत्तम बन सकता है। जब मैंने आपको प्रक्रिया दी है और आप कह रहे हो मैं तो इतना पतित हूं कि मैं ये नहीं कर सकता, मतलब मेरी प्रक्रिया फॉल्टी है ना, भगवान सोचेंगे कि अरे आप साधक सिर्फ मुंह पे बोल रहे हैं कि आपने जो प्रक्रिया दिया है वो कमजोर प्रक्रिया है, वो परफेक्ट नहीं है, वो मुझे नहीं बचा सकती, मैं तो इतना पतित हूं। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि आप ना अति पतित हो ना अति उन्नत हो, आप कुछ भी नहीं हो, आप अति कुछ भी नहीं हो, यू आर मोस्ट नथिंग, नाइदर मोस्ट फॉलन मोस्ट एडवांस्ड, आप एकदम अति सामान्य हो। ऐसे प्रभुपाद जी बताते थे, जस्ट टू मेक इट अ पॉइंट वेरी क्लियर, कि नम्रता का मतलब ये नहीं कि मैं पतित हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सही में पतित समझता है तो वो तुरंत कोशिश करेगा अपने आप को बचाने का। समझो आपको लग रहा है कि आप डूब रहे हो, अगर आपको हकीकत में वास्तव में आपको यकीन हो गया कि मैं डूब रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे? मैं डूब रहा हूँ ऐसा बोलेंगे क्या? तुरंत जाएंगे अपने आप को बचाने के लिए, सहारा लेंगे जो नहीं डूब रहे हैं उनका हाथ पकड़ने का कोशिश करेंगे, चिल्लाएंगे पुकारेंगे। ये उस पतित व्यक्ति का लक्षण है जो अपने आप को पतित समझता है। सही में जो पतित समझता है वो अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन जो ढोंगी है वो खाली पतित मुंह से कहेगा और करेगा कुछ नहीं। इसलिए ये जो पद्धति है, बड़ा लंबा प्रसंग है ये, बहुत बहुत कुछ सीखने जैसा है इस प्रसंग में, समय इतना नहीं अपने पास, फिर भी समझने का प्रयास यही है हमारा कि अगर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हमें कैसे कैसे प्रगति करनी है इसके स्तर बता रहे हैं, और हमारे पास जो प्रक्रिया प्राप्त है भगवान के नाम का जप करने की, चार नियम पालन करने की, संतों का संग करने की, प्रसाद ग्रहण करने की, नित्य रूप से ग्रंथों का अध्ययन, ये जो हमारी ABCD प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया को करने के बाद पतित से पतित जीव भी अति महत्तम बन सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना का ये जो प्रक्रिया है, इसका सार क्या है? इसका सार जो बद्ध जीव है, जो अनंत दुर्गुणों से लिप्त है, वो पूर्णता शुद्ध होकर परम स्थिति को पहुंच सकता है, चाहे वो कोई भी आत्मा क्यों ना हो, किसी भी लोक क्यों ना हो। अल्टीमेटली आत्मा तो एक ही गुण, एक ही स्तर की होती है, सबकी क्वालिटी एक ही होती है। तो किसी भी जीव को आप पकड़ेंगे और उस पर ये प्रक्रिया अपनाएंगे, प्रक्रिया को अमल करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर ये अपने आप गुण प्रवृत्त होते हैं। तो व्हाट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस? इट्स चेंज ऑफ एटीट्यूड, अपनी मनोप्रवृत्ति को बदलना, हृदय को परिवर्तित करना, अपने प्रवृत्तियों को परिवर्तित करके भगवान के लिए अनुकूल प्रवृत्तियों में उसका रूपांतर करना, यही कृष्ण कॉन्शियसनेस है। हाँ, कोई लंबी दाढ़ी और बहुत तेज चेहरे में और ऐसा बहुत भारी दृष्ट, ऐसा सब प्रगति नहीं होता है। प्रगति तो आत्मा में होनी है, बाहर से थोड़ी होनी है। अरे 10 साल से जब के अभी चेहरे में तेज नहीं आया, थोड़ा मेकअप करना चाहिए अभी, ताकि लोगों को लगे कि मैं 10 साल का भक्त हूँ। परिवर्तन हृदय में होना है, आत्मा में होना है, प्रवृत्ति में होना है, और प्रवृत्तियों को पूरी तरह बदलने की शक्ति कृष्ण कॉन्शियसनेस पद्धति में है। रूप गोस्वामी समझाते हैं, ये जो शुद्ध भक्तिपूर्ण प्रक्रिया है इतनी शक्तिशाली है कि पतित से पतित जीव को भी भगवान के निकट के पार्षद बना सकती है। तो चेंज किस में होता है? शरीर में नहीं होता है, मन में नहीं होता है, चेंज केवल आत्मा में होता है। और वो शायद दूसरों को पता चले या नहीं पता चले, लोग उसको पहचाने या नहीं पहचाने, चाहे उसके अनंत अनुयायी हो या कोई भी नहीं हो अनुयायी, कुछ फर्क नहीं पड़ता है उससे, क्योंकि आत्मा की जो उन्नति है वो हमारे और भगवान के बीच का एक प्राइवेट विषय है, उसको जनता को अवगत कराना जरूरत नहीं है। अगर हो जाता है ठीक है, लेकिन हमें उसके लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है, और हमें अपने आप को परखना भी जरूरी नहीं है, ऐसे कि अरे मेरे तो 10 ही अनुयायी है, और मेरे साथ में जो भक्त बना था, जिसको मैंने भक्त बनाया था, उसको तो 1000 अनुयायी हो गए, मतलब मैं पीछे रह गया। ये सोचने की कोई जरूरत नहीं, हमको अपनी सेवा करनी है, जो बताया गया वो करना है बस। और अगर आप प्रामाणिक तरीके से, निरपेक्ष भाव से, किसी भी अन्य अपेक्षा को न रखते हुए अगर नियमित रूप से ये साधना करते रहेंगे, तो अपने आप आपके प्रवृत्ति में अमूलाग्र बदल आएगा। अमूलाग्र का मतलब क्या है? अमूल अग्र, टॉप टू बॉटम, पूर्णता से, न केवल आत्मा में, मन में भी आएगा, हर प्रकार से आपके अस्तित्व में वो परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। ये इतनी शक्तिशाली प्रक्रिया है। इसलिए इधर रूपक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने और भी वर्णन दिया है कि जो बुरे लोग होते हैं उनकी कैसी स्थिति होती है। एक होता है असाधु, असाधु यानी जो भगवान पर विश्वास नहीं रखता है, लोगों की निंदा करता है, द्वेष करता है। असाधुतर वो क्यों होता है? वो केवल लोगों के दोष देखता है। गुण इतने बड़ी मात्रा में प्रकाशित होने पर भी वो उसको अनुभव ही नहीं करता है, वो है असाधुतर। और असाधुतम कौन है, उसको किसी के अंदर कोई गुण दिखाई नहीं पड़ते, वो केवल बुरे गुण दिखाई पड़ते हैं और वे बुरे गुण को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है, वो बार बार उसी पर बात करेगा, बार बार उसको इतना दिखाएगा, इतना दोष होगा तो इतना बड़ा करके लोगों के सामने प्रस्तुत करेगा दूसरों के बारे में। और असाधु अति असाधुतम कौन है, वो उसको लगता है कि दुनिया में कोई अच्छा नहीं है, जब भी मिलेगा तो सब बुरे हैं, इसमें कुछ अच्छा नहीं है, ये अति असाधुतम व्यक्ति का लक्षण है। इसका उदाहरण क्या है, दुर्योधन, उसको कहा गया था, एक वस्तु दिया था, बोला कि आपसे जो अच्छा होगा व्यक्ति उसको आप देके आओ उसको, तो लौट के आया वो बहुत देर के बाद, बोला दुनिया में मेरे से अच्छा कोई नहीं है, सब बुरे हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहा गया था कि जो आपसे छोटे हैं उनको ये वस्तु देके आओ, तो वो भी फल वापस लेके आए, बोले दुनिया में मुझसे छोटा कोई नहीं है, सब मुझसे बड़े हैं, सब मुझसे अच्छे हैं। वो इतने अच्छे थे युधिष्ठिर महाराज कि वो दुर्योधन को कभी उन्होंने दुर्योधन के नाम से नहीं पुकारा, क्या बोलते थे वो दुर्योधन को, सुयोधन, वो दुर्योधन को सुयोधन के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि दुर ये जो प्रत्यय है ना, दुर ये गलत चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, दुर्जन, दुरवस्था, दुस्थिति, ये दु जो है वो दुशासन, ये जो गलत चीज़ के लिए हम दु यूज़ करते हैं, तो वो दुर्योधन को भी सुयोधन कहा करते थे। जब उसको एक फल दिया गया था और कहा गया था कि जहां पर कोई भी नहीं देख रहा हो वहां जाके खा के आओ, तो सब कौरव पांडव कहीं ना कहीं गुफा में छुपकर वो फल खा के आए, युधिष्ठिर महाराज वो फल लेकर लौट के आए, बोले दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पर कोई नहीं देख रहा है, हाँ सब जगह भगवान की आंखें हैं, सब जगह भगवान के कान हैं, सब जगह भगवान के हाथ हैं, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां भगवान नहीं देख रहे हैं, तो मैं वापस लेके आया हूँ, ऐसे महान वैष्णव थे वो। तो एक ही लीला में एक जगह दुर्योधन है, एक जगह युधिष्ठिर महाराज, और यहां पर शंकर जी का जिक्र कर रहे हैं, शंकर जी कैसे अति महत्तम है, क्योंकि उनके पास जो आता है कोई व्यक्ति कोई वर मांगता है वो तुरंत उसका उसके अंदर दुगुणी गुण देखते हैं। जैसे एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि मैं अभी जिसको भी हाथ लगाऊंगा ना उसका भस्म होना चाहिए। अभी आप और हम इतना तो बुद्धि रखते हैं कि भाई ये आदमी तो बहुत द्वेषी है, इसका शत्रु कोई है, उसको मारना है उसको, है ना, कोई इसके अंदर कोई ऐसा विचार है उसका, ऐसा हेतु है, दोषित हेतु। तो हमारे शिवजी महाराज क्या सोचते हैं, देखो वो मुझे कह रहा है कि मैं जिस भी को चीज़ को हाथ लगाऊंगा वो भस्म बन जाएगा, फिर मैं वो भस्म आपको अर्पण करूंगा, क्योंकि आप रोज़ भस्म लगाते हैं ना, तो आपको भस्म के लिए कष्ट ना हो कि आपको भस्म मिलेगा, मैं आपको रोज़ हर चीज़ को हाथ लगा के भस्म बना के आपको पहुंचाया करूंगा। तो भोलेनाथ हमारे तुरंत मान जाते हैं, वो जो पापी प्रवृत्ति का उसके अंदर भाव है उसकी वजह से वो वर मांग रहा है, वो होते हुए भी शिवजी महाराज क्या सोच रहे हैं, ये तो मुझे भस्म देने की बात कर रहे हैं, उस दुर्गुण को सद्गुण के रूप में देख रहे हैं। यही यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिवजी कैसे हैं, एकदम जाहिर रूप में प्रकट रूप में दुर्गुण है वो, लेकिन इनका चश्मा ऐसा है कि वो दुर्गुण उनको सद्गुण ही दिखाई पड़ता है। संत ऐसे होते हैं, ये एक सबसे उच्च स्थिति है कि न केवल असली गुणों को वृद्धित करके वो महान करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, मतलब कम से कम सद्गुण तो दिखाई पड़ रहे ना वो, अरे दुर्गुण को भी सद्गुण के रूप में देखते हैं और उसके अनुसार उसके सामने व्यवहार करते हैं। माता भी ऐसी होती है, अपने बच्चे के अंदर कितना भी दुर्गुण होंगे उसको दिखाई नहीं पड़ते कभी भी, वो तो अब मेरा बाबू करेगी उसको, है ना, कभी बात नहीं करेगी, वो पेंसिल चोरी करता है और वो इरेजर भी चोरी करता है, दूसरे के घर से वो वस्तु उठा के लेके आता है, कभी नहीं बोलेगी वो। और लेकिन एक चीज़ अच्छा करेगी कि मेरे बेटे ने एक किला दिया था तो आधा दूसरा कुतरे को दिया, उसको 50 बार कहेगी। तो माता भी अपने स्वार्थ के लिए अपने आसक्ति के प्रतीक में ये गुण प्रकट कर रही है, लेकिन हमको इसके परे उठकर माता का वो जो गुण है दूसरों के अंदर सद्गुण देखने का, उसको प्रकाशित करने का, उसको स्वीकार करना चाहिए। ऐसे ही हमारे शिवजी महाराज बड़ी आसानी से थोड़ी बहुत उसका भजन कर ले तो वरदान दे देते हैं। इतने इनका हृदय कोमल है कि एक व्यक्ति ने उनका भजन किया भजन किया भजन किया, अपने हाथ काट रहा है, ये काट रहा है, वो काट रहा है, सब अर्पण कर रहा है, गला भी काटने वाला था अग्नि में डालने के लिए, तो ले बस बस रुक जा क्या चाहिए तुझे। तो शिवजी महाराज आए दर्शन देने के लिए पार्वती के साथ, बोले क्या चाहिए तुझे। तो ये व्यक्ति इतना दुष्ट है तमोगुणी कि जब देख रहा है कि शिव जी के साथ में पार्वती भी है, बड़ी सुंदर है, तो ये पूछता है कि मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो मर जाना चाहिए। तो तुरंत दे दिया वरदान उसको। तो सबसे पहले वो गया किसको हाथ लगाने के लिए, सर पे पार्वती नहीं खुद के शिव जी के सर पे हाथ लगाने गया, वो खुद जिसने वरदान दिया उसी के सर पे हाथ लगाने गया, क्योंकि उसके मन में तभी उस क्षण में क्या विचार आया, अगर मैं इनके हाथ पर सर पे हाथ रखूं ये मर जाएंगे तो पार्वती मेरी हो जाएगी, फिर मैं उसका भोग लूंगा। तो शिवजी भाग रहे हैं। फिर उनको विष्णु मिलते हैं, अरे क्यों भाग रहे हो, वो मेरा जो शिष्य है वो भक्त जो वो मेरे पीछे भागा हुआ है। अच्छा कोई बात नहीं, मैं देख लाऊँ उसको। फिर ब्राह्मण बन के आते हैं उसके पीछे, वो भाग रहा है शिव जी के पीछे, बोले क्यों भाग रहे हो, नहीं नहीं उनको हाथ लगाना है, वो उनको हाथ लगाएंगे तो फिर पार्वती मेरी हो जाएगी। तो विष्णु कहते हैं अरे पागल, वो तो भस्म लगाता है, वो जंगल में रहता है, स्मशान में रहता है, उसके भूत प्रेत पिशाचु का संग है, क्या उसकी मति है, क्या उसका संग है, क्या उसका निवास है, क्या उसका उलिया है, तो विश्वास करते हैं उस बात पर कि वो वैसे बोलेंगे तो सच हो जाएगा। देखो तू अपने हाथ सर पे हाथ लगा के देखो क्या होता है, कुछ नहीं होगा। अभी भगवान कैसे हैं, उनके अंदर सम्मोहन विद्या है, सम्मोहन विद्या के साथ में जब बोलते हैं ना तो सब सच लगता है, तो उनकी वाणी से तुरंत वो अपने सर पे हाथ लगाता है और खुद मर जाता है। उस तरह से भोलेनाथ जी को विष्णु भगवान बचाते हैं, लेकिन भोलेनाथ रहते हैं हमेशा, वो अपना जो निष्पाप निरागस व्यक्तित्व है उसको त्याग नहीं करते हैं, अगली बार ना मैं बड़ी होशियारी से काम लूंगा ऐसा नहीं करते। और इतने महान हैं, इतने नम्र हैं शिवजी महाराज, वो जब भी मुरली बजी ना भगवान की बंसीवट पे, तो ऐसे भागे वो कैलाश से भागे कि मुझे अब भी जाना है दर्शन करने। ये नहीं है कि वो नृत्य कर रहे हैं, रास नृत्य करने वाले हैं, मुझे भी उसमें जाना है, देखना है, भाग लेना है, ये भाव नहीं उनका, उनको सेवा करनी है। ऐसे भाग के आए हवा की गति से, रास मंडल के पास आ गए, तो ललिता देवी ने सब सखियों ने रोक लिया उनको, बोले कहाँ जा रहे हो, ये इस मंडल पे केवल एक ही पुरुष है, वो श्री कृष्ण है, बाकी सब स्त्रियां हैं, इसके अंदर किसी को प्रवेश नहीं है। अच्छा कैसे प्रवेश मिलेगा इसको बताओ, बोले स्त्री बनना होगा, गोपी बनना होगा। अच्छा तो भाई हमको कोई बोलेगा कि गोपी बनना होगा तो हम बोलेंगे सोच के बताता हूँ कल आऊँगा तब सोच के आऊँगा, बीवी को पूछता हूँ, मेरी बेटी को पूछता हूँ क्या उनका विचार है, उनको कैसा लगता है आइडिया। ऑन द स्पॉट बोलते कैसे गोपी बनना है बताओ, कैसे गोपी बनना है अभी बता दो। तो कहते हैं कि जाओ जमुना पार जाओ, वहाँ पर एक मान सरोवर है जहाँ पर राधा रानी एक बार मान करके रोई थी, उसके अश्रुओं से वो सरोवर बना हुआ है, बहुत उत्कट जगह है, वहाँ पर स्नान कर लो, गोपी का भाव शरीर प्राप्त हो जाएगा आपको। ऐसे भागे नदी के बीच में से भागे कूद कूद कर, कब पहुँचे हवा की गति से मान सरोवर में, डुबकी लगाया तुरंत सुंदर गोपी शरीर प्राप्त हो गया। ए वहाँ से भागे सीधे जमुना पार करके रास मंडल के पास आए, तो जब आए तो सब गोपियाँ ठाका मार के हंस रही हैं, क्यों बताओ क्या उसमें हंसने का है, सुंदर गोपी बनकर आए हैं। अरे वो गोपी बने, वो सांप जो थे वो नहीं गोपी बने, सांप तो सांप ही रह गए ना, वो सर पे भी एक, अभी आप देखो आप में से कोई सुंदर स्त्री है बहुत श्रृंगार करके आई है, उसके सर पे एक सांप है, गले में एक सांप है, हाथ में एक सांप है, ऐसे कैसे लगेगा आपको। तो वो देख रहे हैं, इनको तो ध्यान ही नहीं है, इनको तो बोलते ना भान यानी कि अवेयरनेस ही नहीं है कि इनके ऊपर सांप तो सांप ही रह गए, क्योंकि सांप तो वो भाव में नहीं गए थे ना, वहाँ पर गोपी कौन बनता है जाके, जिनके मन में वो भाव है वही गोपी का शरीर प्राप्त करता है। हमने तो कई बार स्नान लगाया, हम तो वैसे के वैसे रह गए उधर तो इनका ये जो भाव है कि इनको ठाकुर जी की सेवा में क्या बने हुए हैं, क्या लोग सोच रहे हैं, कौन हंस रहा है, कोई नहीं हंस रहा है, ये सांप है कि नहीं है, कोई विचार ही नहीं उनके मन में। विचार मतलब अवेयरनेस ही नहीं, तो विचार कैसे आएगा, अनुभूति नहीं है। मतलब सांप तो उनके शरीर पे ही थे, लेकिन उनको पता नहीं है कि मेरे शरीर पे सांप है, इतने भाव में है वो। तो उनका भाव देखकर ललिता देवी बहुत प्रभावित हो गई, उन्होंने तुरंत उसका श्रृंगार किया, गोपेश्वर महादेव बताया, सुंदर गोपी बनाया और अपने हाथ से पकड़कर उसको सारे दिव्य बड़े विस्तार पूर्वक विशाल रास मंडल के बीच में ले गई। हाँ, दिव्याद वृंदारण्य कल्पद्रुमाधा श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ, उस कल्पद्रुम के नीचे, बंसीवट के नीचे, रत्नों का सिंहासन पे श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव बैठे हुए हैं। राधा गोविंद जी, श्रीमद राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठालि भी सेव्य मानो स्मरामी, उसके बीच ले गई उनको और हाथ में चामर दिया और चामर की सेवा किया, जुगल जोड़ी का, राधा और श्याम सुंदर का। हाँ, बहुत देर तक सेवा किया मुख कमल को निहारते हुए। चामर ढुला बो कबे हेरी बो मुख चंद्र, चामर ढुलाते ना, यहाँ पर होता है फिर मुख कमल का दर्शन होता है, यहाँ पर करते हैं फिर मुख कमल को निहारते हैं, ऐसे सुंदर भावपूर्वक सेवा किया। और फिर ललिता देवी ने फिर दोबारा उनका हाथ पकड़ के उनको रासमंडल के बाहर ले गई, उन्होंने कहा अब यहाँ खड़े रहो और इस रासमंडल का रक्षण करो। आज भी वहाँ बैठे हुए हैं गोपी बनकर, हर शाम को उस शिवलिंग का गोपी स्वरूप में श्रृंगार होता है और सब जनता जाती दर्शन करने के लिए, देखो कैसे महादेव हमारे। हाँ, अरे उनको तो पुरुष होने का भी कोई अहंकार नहीं है, कोई क्या कहते हैं उसको, अटैचमेंट नहीं है। ठाकुर जी के लिए पुरुष हो, स्त्री हो, कन्या हो, बालक हो, कुछ भी हो, ठाकुर जी के सेवक सेवा करने के लिए जो भी अनुकूल है वो बन जाना। अभी अगर अनुकूल कन्या बनना है रेडी, फिर बोले पुरुष बन जाओ फिर रेडी, फिर बोलेंगे ये बन जाओ रेडी। अरे एक बार उन्होंने कहा कि भगवान को कि आपने तो विष्णु भगवान आपने तो मोहिनी का रूप दिखाया था, हमने सुना है बहुत आकर्षक था, हमको इच्छा है आपका मोह रूप देखने की। तो विष्णु कहते हैं अरे आपकी स्थिति बहुत बिकट हो जाएगी अगर आप देखेंगे तो। नहीं नहीं नहीं, आप चिंता मत करो, आप अपना मोहिनी रूप दिखाओ। तो अचानक विष्णु जी मोहिनी बन गए, और ऐसे कहा गया है कि वो वैसे मोहिनी बने जो पहले से भी अधिक तीव्र और उत्कट, जो पहले मोहिनी बने थे ना जब भी वो समुद्र मंथन वगैरह हुआ था, उससे भी अधिक पावरफुल माया के द्वारा पूर्णता से प्रभावित ऐसे रूप धारण किया उन्होंने। तो ये तो इतने क्या कहते हैं उसको, लंपट जैसे हो गए। हाँ, और भागने लगे उसके पीछे, और वो भाग रही है मोहिनी, ये भाग रहे हैं। अब लोगों के क्या लगेगा, देखो हो गया ना, ये हमारे शिवजी महाराज इतने विरक्त थे, देखो कि कैसे भाग रहे हैं औरत के पीछे। वो औरत के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो अपने भगवान के पीछे भाग रहे हैं। वो तो वो स्त्री का शरीर नहीं दिख रहे हैं, वो तो भगवान को देख रहे हैं, इतना सुंदर शरीर उनका, भाग रहे हैं उनके पीछे। और वो भी कैसे, मोहिनी एक एक वस्त्रों को उठा के फेंक रही है और भाग रही है। और मोहिनी देवी शिव जी का गौरव और बढ़ाने के लिए और प्रकट करने के लिए क्या करती है, उस विभाग से भागती है जहाँ पर शिव जी के जो अनुयायी हैं, उनके शिष्य हैं, या कहते हैं उनके क्या कहते हैं भक्त हैं उनके, शिव जी इतने विरक्त हैं तो उनके भक्त जो है वो भी विरक्ति का अभ्यास करते हैं, साधना करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ कर, कन्या वन्या सब, परिवार धन दौलत ऐश्वर्य प्रभाव सब कुछ छोड़कर विरक्त होने के लिए तपस्या करते रहते हैं, उस जगह के बीच बीच भागती है वो। तो सब साधु औरत परेशान हो जाते हैं, अरे क्या है, क्या औरत है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कुछ भान नहीं है कि कहाँ से जा रही है। चलो ठीक है, वो तो ऐसे ही औरत है, भाग रही है, चलो फिर ध्यान में बैठते हैं। कुछ देर बाद फिर उनकी आँख खुलती है, तब क्या देखते हैं, उनके आराध्य शिवजी महाराज भाग रहे हैं। अरे पहले तो ठीक था कि भाई कोई औरत भाग रही है, अभी उन्हीं के आराध्य जो है उसी औरत के पीछे भाग रहे हैं। और शिवजी महाराज को एक कण की परवाह नहीं है कि मेरे शिष्य क्या कहेंगे, मेरा आराधना करना छोड़ देंगे, मेरा तपस्या छोड़ देंगे, मुझे पूजना छोड़ देंगे, मेरा अनुयायित्व छोड़ देंगे, हाँ फिर मेरा क्या होगा, फिर लोग कौन मुझे पूजेगा। अपने भगवान के सामने अपनी जो प्रेस्टीज है उसकी भी परवाह नहीं उनको। जिनको आचार्यों के द्वारा दिया हुआ टिप्पणी पता नहीं है वो क्या बोलेंगे, ये देखो महादेव, ये तुम्हारे परम वैष्णव, देखो क्या स्थिति है उनकी। इतने उनको कुछ ज़्यादा भी संकोच नहीं है, अपने शिष्यों के अनुयायियों के बीच में से उस औरत के पीछे भाग रहे, इतना काम, इतने काम वासना, ऐसे कोई दुनियादारी का व्यक्ति बोलेगा। आचार्य समझाते हैं ये शिव जी का इतना महान गुण है, इतनी आसक्ति भगवान से कि उस आसक्ति के सामने हाँ न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामय, उस आसक्ति भगवान के आसक्ति के सामने न अनुयायी चाहिए, न धन दौलत चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न राज्य चाहिए, न सुंदरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल भगवान चाहिए बस। और इतना सा होने पर भी वो जो विरक्त संत थे उन्होंने शिव जी को आराध्य मानना बंद नहीं किया, उनका शिव जी ही आराध्य बने रहे, क्योंकि वो भी बहुत साक्षात्कारी भक्त थे भगवान के, वो जानते थे कि हमारे भगवान आराध्य शिव जी महाराज जो भागते हुए दिखाई दे रहे ये बहुत महान है, इनको समझना बहुत मुश्किल है, इनका भाव क्या है। तो वही शिव जी महाराज यहाँ पर नासिक क्षेत्र में त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान है, वही इतने महान व्यक्ति है जो हलाहल विष को अपने कंठ में रख सके। वो हलाहल विष जो था ना वो इतना भयंकर था कि उसका ब्रह्मांड में होना भी ब्रह्मांड के लिए विनाशकारी था, केवल होना, पीना बिना दो भूल जाओ उसको। इफ इट एग्जिस्टेड इन ब्रह्मांड द ब्रह्मांड वॉज इज डेंजर। ये सब भाग गए, सब लोग भाग गए उसको देख के। शिव जी आए, बड़े फिनान से अपने बल से उसको पिया, अपने गले तक सीमित रखा उसको। कितने महान है शिव जी, देखो आप। जब गंगा जी आने का समय हुआ हाँ, तो गंगा जी ने कहा था देखो मैं तो आऊंगी तो मेरा प्रभाव इतना तेज होगा कि दुनिया की कोई वस्तु मुझे रोक नहीं पाएगी, मैं दुनिया को ही बहा ले जाऊंगी, पृथ्वी होती सब तो बह जाएगी गेंद की तरह। तो किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो मेरे गति को रोक सके, उसको कंट्रोल करके जितनी गति चाहिए उतना गति छोड़ देगा वो। कोई नहीं था ब्रह्मांड में, कोई नहीं मिला, कोई तपस्वी ऐसा नहीं, कोई देव नहीं ऐसा, महादेव जी को बुलाना पड़ा। और महादेव जी ने अपनी जटाएं फैलाई और सारा गंगा जी को अपनी जटाओं में लपेट लिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि वो स्पीड कम हो गया और थोड़ा सा स्पीड से कम स्पीड में बाहर निकल गई, वो लपेट ही लिया पूरा उसको। तो गंगा जी का भी तो अहंकार था कि मेरी मुझ में इतनी गति है, वो भी चूर चूर हो गया। तो गंगा जी मोहित हो गई और शिव जी से बहुत उनको आसक्ति हो गई, तो शिव जी के जटाओं में बड़े प्रेम से विहार करने लगी वो। तो मैं यहीं रहूंगी, इतने बड़े महात्मा के संग में रहूंगी। तो आप देख सकते हैं शिव जी कैसी पर्सनैलिटी है। ये जो शिव तत्व जो है ये बहुत अनोखा तत्व है, ये ना तो जीव तत्व है ना तो विष्णु तत्व है, इसके बीच में है ये। विष्णु तत्व जो है वो 60 जो दिव्य गुण होते हैं उससे संपृक्त है। ये सब प्रभु रामचंद्र, नरसिंह भगवान, मत्स्य अवतार, कुरुमा अवतार, जितने भी अनंत अवतार विष्णु के हुए हैं ये 60 गुणों के संपृक्त अवतार हैं। और जीव जो है उसके अंदर 50 गुण होते हैं और वे हमारे अंदर उसको अणु मात्र या नगण्य मात्रा में होते हैं, और वो परिपूर्ण मात्रा में 50 गुण ब्रह्मा जी के अंदर होते हैं। ब्रह्मा भी जीव है लेकिन वो प्रकट, पूर्ण प्रकट जीव है, उसके अंदर पूरे 50 गुण जो है पूर्ण प्रकट होते हैं 100%। और शिवजी महाराज बीच में 55 गुण है उनके अंदर, अलग तत्व है वो। वो एक तत्व, अलग तत्व का केवल एक जीव है, दैट इज शिव जी महाराज। और सभी शिवजियों का एक ही उगम है सदाशिव, जो स्वयं विष्णु है, जो वैकुंठ में रहते हैं उनका विस्तार शिव जी है, जो हर एक ब्रह्मांड में एक एक शिव जी रहते हैं पंचमुखी। बहुत अनोखे व्यक्तित्व है ये शिव जी, और इनका गौरव कितना करें उतना कम है, क्योंकि भगवान के परम वैष्णव हैं, बड़े निरपेक्ष और निष्प्रूह साधु हैं वो। एक बार पार्वती जी ने बोला कि अरे कुछ घर वर तो बनाओ, कितने दिन पेट के नीचे रहेंगे। तो वो तो ऐसा नहीं है कि वो फकीर है, उनका कुछ नहीं है, एक झटके के अंदर ऐसा महल बनाया, ऐसा भवन बनाया कि देखते रह गए सब देवता लोग। हाँ, किसी के पास ऐसा भवन नहीं, ऐसा दिव्य भवन बनाया उन्होंने, हजारों दासियां उसके अंदर, ऐश्वर्य, अन्न धान्य, क्या चाहिए आपको। तो पार्वती ने कहा कि चलो अभी इतना बड़ा घर हो गया है तो एक बार सबको भोजन को बुलाएंगे ना। गृहस्थी का मतलब क्या होता है, अतिथि और भोजन होना ही चाहिए, तो गृहस्थी का मतलब क्या है, आपके पास एक बेट है, टापू पूरा आपका होगा, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पर आता ही नहीं है, ना भोजन करने के लिए ना बात करने के लिए, वो टापू का उपयोग क्या है आपका? तो शिवजी महाराज तुरंत अन्नपूर्णा जी कहती हैं चलो भंडारा लगाओ। तो भंडारा होता है, सब सभी देवता सभी लोग आते हैं, ऋषिगण आते हैं, अभी भंडारा होता है किसी महान व्यक्ति के घर पे, तो दान पुण्य भी होता है, उसमें दान भी देते हैं। सबको भोजन कराया अन्नपूर्णा जी ने, हाँ शिवजी महाराज कहे आ जाओ सब दान ले लो, सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं, किसी को क्या क्या दे रहे हैं। एक साधु आता है बोलता है ये भवन मुझे दे दो, भवन दे दिया उसको। फिर आ गए पेड़ के नीचे, वहाँ भजन कर रहे हैं, बस एक ही इवेंट के लिए था वो भवन उनका, दिया किसी को दे दिया, कोई आसक्ति नहीं है। अरे इतना बड़ा भवन पत्नी के लिए बनाया, पत्नी भी पेड़ के नीचे और वो भी पेड़ के नीचे, दुनिया को भोजन कराते हैं पार्वती देवी, सब अन्नपूर्णा देवी है वो, हाँ रहती कहाँ है पेड़ के नीचे अपने पति के साथ, कि जैसे पति महान है वैसी पत्नी भी महान है। सती के रूप में वो मर जाती है, दोबारा जन्म लेती है हिमाचल के हिमालय के पुत्री के रूप में, उसका नाम पार्वती बनता है, पर्वत की कन्या पार्वती, फिर तपस्या करती है, और तपस्या किसकी करती है, शिव जी के लिंग की पूजा करती है, जननेन्द्रिय की पूजा करती है, लेकिन शिव जी एक टस से मस नहीं होते हैं। इतनी सुंदर औरत, हाँ भगवान की बहिरंगा शक्ति है वो, महामाया कितनी सुंदर होगी वो तपस्या कर रही है, वो भी आपके लिंग की पूजा कर रही है, जरा सा भी विचलित नहीं होते हैं। फिर उसको उनको प्रसन्न करके फिर उनके विवाह हो जाता है शिव पार्वती का। ऐसे ये दोनों हैं बड़े महान, और देवी पार्वती भी भगवान की बहुत बहुत बड़ी भक्त है, बहुत शक्तिशाली, और भगवान की बहुत बड़ी विशेष कार्य करती है वो, इस दुर्ग को पालन करती है, इसलिए नाम दुर्गा देवी है उनका, उनके पति देव शिव जी हैं। हाँ सब कुछ बल और शक्ति और अहमियत होने पर भी वो फकीर की तरह रहते हैं, ऐसा नहीं कि उनके पास एक झटके में भवन निर्माण करते हैं, लेकिन रहते नहीं भवन के अंदर, क्योंकि सारी शक्ति होने पर भी अगर कोई नम्र होता है तो उसे भगवान की कृपा मानते हैं। आफ्टर हैविंग ऑल द ऑपुलेंस इन द वर्ल्ड यू मेंटेन ह्यूमिलिटी, दैट इज टू बी अंडरस्टूड एज द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। तो श्री चैतन्य महाप्रभु यही सिखाते हैं, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामये, मम जन्मनी जन्मनीश्वरे, जन्म जन्मांतर तक, नहीं मोक्ष भी नहीं चाहता हूं मैं, जन्म जन्मांतर तक आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे, यही मेरी एकमात्र इच्छा है। तो इसलिए इस सार को समझना जरूरी है, भक्ति में कितने साल हो गए, 30 साल हो गए, 35 साल हो गए, 40 साल हो गए, संन्यास ले लिया, हमारे शिष्य भी हो गए, अभी हमारा इतना बड़ा संप्रदाय भी है, ये सब तो चीज़ें ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इस पर सब कुछ तय नहीं होता है। किसी की आध्यात्मिक उन्नति इन बाहरी गणित के ऊपर और स्कोर के ऊपर तय नहीं होती है, अंदर से भगवान के प्रति शरणागति, समर्पण की भावना, नम्रता और भजन भक्ति, कितनी वृद्धि उसके अंदर हो गई है, उसके ऊपर हमारी परख होती है, और वो परख जो है वो श्री गुरु और केवल भगवान ही कर सकते हैं, और कोई देखने वाला व्यक्ति इसके परख नहीं कर सकता है, क्योंकि देखने वाला दुनिया का कोई भी व्यक्ति होगा उसकी परख में वो शुद्धि और पवित्रता नहीं हो सकती है, ये तो गुरुदेव और भगवान के बीच में होती है। तो आइए हम सब लोग शंकर जी महाराज पर ध्यान करें, उनकी प्रार्थना करें, उनसे कोई भौतिक चीज़ न मांगे, उनसे केवल जो उनके अंदर भगवान के प्रति भजन भक्ति भाव है, प्रेम प्रवृत्ति है, समर्पित भावना है श्री कृष्ण के प्रति, वो हम उनसे याचना करेंगे। श्री शंकर भगवान की, पार्वती देवी की, श्री श्री राधा मदन गोपाल देव की जय। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? कोई टिप्पणी, कोई कमेंट्स? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय हो।